श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 23। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अवध पूर्वकम्। इस श्लोक को अनुवाद अब देखते हैं। पहले हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इससे पहले कि हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में जाएं, हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य को देखेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उसको चर्चा करेंगे, फिर प्रभुपाद के तात्पर्य को देखेंगे। 15वें श्लोक में आचार्य समझाते हैं कि भगवान ने बोला था कि तीन प्रकार की उपासना उनकी होती है और उसमें जो तीसरी उपासना है वो विश्व रूप के द्वारा होती है, जिसमें लोग उनकी विभूतियों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, और उसको समझाने के लिए भगवान ने 16 से 19 श्लोकों को समझाया था। बहुत सारे लोग इंद्र की पूजा करते हैं अपने कर्मयोग के अभ्यास के एक भाग के रूप में, श्लोक क्रमांक 20 में बताया गया था। तो वो मुख्यतः देवताओं की ही पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी तो वो आपके ही भक्त हुए ना, ये प्रश्न आचार्य उठाते हैं, क्योंकि देवता तो आपकी विभूति हैं। तो फिर जो देवता के उपासक हैं, इनको मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं होती है? भगवान श्री कृष्ण ने अभी 21वें श्लोक में बताया, गतागतम काम कामा लभन्ते, कि ऐसे लोग जो देवताओं की उपासना करते हैं वो बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया था कि जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, कामस तैस तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाया प्रकृतया नियता सोया, जिनकी बुद्धि काम वासनाओं से मारी गई है, वो देवताओं की उपासना करते हैं और उनको बहुत ही क्षणिक फल प्राप्त होते हैं जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ये श्लोक उसका उत्तर देता है कि हाँ, ये सही बात है कि वो मेरी पूजा करते हैं, ते माम एव यजंती, लेकिन उनका जो यजन करने का तरीका है, जो सेवा का तरीका है, वो उस पद्धति का नहीं है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सके। ये अविधि पूर्वक तरीके से करते हैं। जो विधि है भगवान को प्राप्त करने की, वो है भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भजन, तो वो ना करने के कारण वापस उस जगत में लौटते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का देखेंगे। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। तो पहली बात तो ये कि क्यों बुद्धिमान नहीं होते, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि देवता अमरत्व नहीं देते हैं और देवता स्वयं भी अमर नहीं है, और देवता जो सुख देते भी हैं वो सुख से आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती। तो ये सारी कुछ चीजें ये मूर्ख लोगों की पहचान है। और उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता है। तो इस स्पष्ट है इस उदाहरण से, यथा तरोर मूल निशिष्ट नेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरण मच्युतेज्य। जब भगवान श्री जिस प्रकार से पेड़ के जल में पानी देने से सारी पत्तियों को मिलता है, पेट में खाना देने से सारी इंद्रियों को मिलता है, ऐसे अच्युत भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके सारे देवताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सभी देवताओं को अलग अलग संतुष्ट करेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को हम संतुष्ट कर लेंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो इस बात को समझता है, लेकिन अल्पबुद्धि लोग देवताओं को भगवान से अलग समझते हैं। वो सोचते हैं कि देवताओं को हम अलग से कुछ प्रलोभन दे करके उनसे कुछ वर प्राप्त कर लेंगे और इस जगत में सुखी हो जाएंगे, जिस जगत को भगवान ने बोला है दुखालयम अशाश्वतम, जो जगत दुख का घर है और अशाश्वत है। तो इस कारण से ऐसा व्यक्ति ये गलत विधि से भगवान की पूजा कर रहा है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना, इसको हमने समझा दिया। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं रक्षा विभाग है और गृह विभाग है, इसी प्रकार से पशुपालन विभाग है, ऐसे ही भगवान की व्यवस्था के अनुसार वर्षा विभाग है, जल विभाग है और अलग अलग प्रकार के विभाग हैं जिनका संचालन देवता करते हैं भगवान के द्वारा नियुक्त होने के द्वारा। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। ये तो स्पष्ट है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण को अगर हम यज्ञ समर्पित करते हैं तो इस यज्ञ का भाग सभी देवताओं को मिलता है, हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधा भी अपने आप ही आती है। लेकिन एक सच्चा भक्त केवल इस उद्देश्य से भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता है कि हाँ भाई भगवान कृष्ण सभी सब कुछ सारे देवताओं को दे देंगे अपना हिस्सा और मैं सुखी रहूंगा जगत में। ना, हमने पहले पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान का भक्त भगवान के सानिध्य को चाहता है, जिससे उसे चिन्ह में रस प्राप्त होता है, आध्यात्मिक सुख, और इसी कारण से अनन्य रूप से भगवान का भजन करता रहता है और भगवान के धाम जाने का योग्य बन जाता है। वो केवल इस जगत में रह करके देवताओं से सुख प्राप्त करके नहीं जीना चाहता है, क्योंकि जगत में कितना भी सुख हो, सुख होने की प्रतीति हो, सुविधाएं हो, फिर भी दुख तो बने ही रहेंगे। तो भक्त इस बात को समझते हैं, इसलिए अपने चित्त को भगवान में ही लगाते हैं। लेकिन जो नहीं समझते वो अन्य अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा भ्रमित होते हैं और उनकी पूजा में लग करके अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ करते हैं, और वही समय उनको अगर भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा श्लोक देखेंगे, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नास्तश्वनन्ति ते। अब भगवान कह रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनका ज्ञान है क्या, और वह ज्ञान ये है, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति सोचे कि भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, वो सामान्य देहधारी हैं, ये तो और भी बड़ा अपराध हो जाएगा, और ना समझ पाए कि सारे यज्ञों का जो भोक्ता है, यानी यज्ञों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, तो ऐसा व्यक्ति तो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रह जाएगा। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि भगवान को तत्व में समझना भगवद गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों से बहुत जरूरी है। हम हरे कृष्णा भी कर रहे हों, लेकिन अगर ये भावना है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा और भक्ति में प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति को भगवद गीता और भगवतम जैसे सत्य शास्त्रों से भी सुनना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र के जप के साथ साथ। भगवान को तत्व में समझने से हमारी भक्ति में प्रगति बहुत अच्छी होती है, तात्पर्य। और ये होता भी है, बहुत से लोग हरे कृष्णा करेंगे और फिर शिव जी का मंत्र भी करेंगे और दुर्गा जी के मंत्र करेंगे और ये सोचेंगे कि सारे मंत्र एक समान प्रभावशाली हैं, तो ये दूसरा नाम अपराध होता है। तो इस प्रकार से फिर उनको सिद्धि प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का अर्थ ही सर्टेनली विष्णु ही है, और विष्णु भगवान विष्णु या कृष्ण को ही संतुष्ट करना यज्ञ का उद्देश्य है, और यज्ञ हमारी क्रियाओं से होते हैं। भगवद गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर हम वो कर्म करते हैं जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, तभी हम मुक्त होंगे, अन्यथा कोई भी कर्म जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। वर्णाश्रम आचरवत पुरुषे न परहपमान विष्णुराध्यते पुंसाम नान्यत तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम का अर्थ यही है कि व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करके उनको संतुष्ट करे, और कोई उद्देश्य वर्णाश्रम का नहीं है। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। प्रभु का मतलब होता है ईश्वर। सारे यज्ञों का फल देने वाले भगवान कृष्ण ही हैं, कोई अन्य नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से अन्य देवताओं को भगवान से अलग देखना ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जैसे हम सोचें कि भई ये कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहा है, लेकिन वस्तुतः उसको जो भी धन या सुविधा दी गई है या आदेश भी दिया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा है, और वो गवर्नमेंट ही, और गवर्नमेंट को जब हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट ही के द्वारा हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति सोचे कि देवता भगवान से अलग हैं, तो ये बहुत बड़ा तत्व के ज्ञान का अभाव है और इस कारण से व्यक्ति मुक्त होने से चूक जाएगा, मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य को से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं के पूछते हैं। बार बार प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं क्षणिक 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 क्षणिक? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शाश्वत समय में हमारा जीवन या देवताओं का जीवन भी एक झटके के समान ही है। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि यानी उन लोगों को जो लोग देवताओं को भगवान के समान ही मानते हैं, यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा, लेकिन साथ साथ भगवान ये भी करेंगे कि उसको सद्बुद्धि देंगे और आप उसकी उसको उसको भगवान अपने धाम की प्राप्ति भी कराएंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर टीका देते हैं इसके ऊपर, जरा हम विचार करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में बताया गया है किस प्रकार से ये अविधि पूर्वकम लोग करते हैं। भगवान एकमात्र भोगता है यज्ञ के फलों के, और वो एकमात्र प्रभु ही हैं और वही इन फलों को देने वाले हैं अन्य अन्य देवताओं के द्वारा। तो जो भगवान की उपासना नहीं करते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं तथ्य में। उदाहरण के लिए व्यक्ति सोचेगा मैं सूर्य का उपासक हूं, सूर्य भगवान मुझसे संतुष्ट हो और मुझे मेरे फलों की प्राप्ति कराएं। सूर्य भगवान है, नारायण भगवान नहीं है, ऐसा वो सोचता है। सूर्य ही मुझे श्रद्धा देते हैं जिसके द्वारा मैं उनकी सेवा करूं या उनकी पूजा करूं, और वो मेरी पूजा के फल को मुझे देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में सच्चा ज्ञान न होने के कारण वो व्यक्ति वापस इस जगत में गिरता है। ये भौतिक ज्ञान है और ये भगवान का तत्व ज्ञान नहीं होने का लक्षण है। लेकिन जो लोग इस जगत में भगवान की पूजा करते हैं ये समझते हुए कि वो वस्तुतः नारायण की ही पूजा कर रहे हैं और सूर्य भगवान नारायण की एक विभूति है, ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मतलब देवताओं की उपासना करे, अगर वो करे, करने की इच्छा भी है, अगर वो कर रहा है ये समझते हुए कि देवता भगवान की विभूति हैं, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा। तो ये अविधि के पूर्वकम भगवान की भजन भजन नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी बेहतर है डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का भजन किया जाए। इतनी सारे उल्टे मतलब राइट लेफ्ट के तरीके की बजाय सीधे कृष्ण का भजन किया जाए, हरे कृष्ण मंत्र का भजन जब किया जाए, भगवान से सीधे संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा हम पर होती है।